I know afternoon class is difficult.
मुझे मालूम है कि दिन की जो कक्षा होती है हल्की मुश्किल होती है.
So we want to review some of these principles of Bible interpretation, then we want to apply them to these questions.
हम बाइबल के व्याख्यान के कुछ सिद्धांतों को देखेंगे, फिर उसके बाद इन प्रश्नों पर उनको लागू करने का प्रयास करेंगे.
But first we're trying to answer this question.
लेकिन सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं.
What are the characteristics of a good Bible interpreter?
एक अच्छे बाइबल के व्याख्यान करने वाले के चरित्र या गुण या पहचान क्या होती है?
Number one,
सबसे पहली बात,
truly born again.
उसका वास्तव में नया जन्म होना चाहिए.
The natural man understandeth not the things of the Spirit of God.
जो एक शारीरिक व्यक्ति है वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को नहीं समझता है.
But he that is spiritual understands all things.
लेकिन वह जो आत्मिक है वो हर एक बात को समझता है.
For who has known the mind of the Lord?
कि किसने परमेश्वर के मस्तिष्क या मन को जाना है?
But we have the mind of Christ.
लेकिन हमारे पास तो मसीह का मन है.
Now that doesn't mean we're omniscient and we know everything that God knows.
इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर एक चीज को जानते हैं और वो सब कुछ जो प्रभु जानता है वो हमको भी ज्ञात है.
It means that God has opened our eyes.
लेकिन इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया है. परमेश्वर ने हमारे मनों को खोल दिया है और परमेश्वर ने हमारी समझ को भी खोल दिया है.
Spirit of God helps us understand the things of God.
और परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर की बातों को समझने में हमारी सहायता करता है.
Number two,
दूसरी बात,
he must be totally committed to the divine inspiration and sole authority of the scripture.
और दूसरी बात, एक सही अच्छे बाइबल के व्याख्या करने वाले को परमेश्वर के वचन के प्रेरणा पे विश्वास करना चाहिए और उसके संपूर्ण अधिकार पे.
He believes that it is inspired by God.
तो उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन संपूर्णता से परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है.
Where does the Bible tell us that?
और ये बात हमको परमेश्वर का वचन कहाँ बताता है कि परमेश्वर का वचन बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है? ये बात हम कहाँ पे देखते हैं?
Exactly. 2 Timothy 3:16.
दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय उसका 16 पद में हमको बताया गया है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित है.
All scripture is given by inspiration of God and is profitable. What's the first thing it's profitable for?
और हर एक संपूर्ण वचन परमेश्वर की ओर से प्रेरित किया गया है और हमारे लिए उपयोगी है. किस चीज के लिए उपयोगी है? किस मामले के? सिद्धांतों के लिए, शिक्षा के लिए, सत्य के लिए.
And who is the main person that should be interested in and committed to this inspiration?
और कौन सा वो जन है जिसको परमेश्वर के वचन की संपूर्ण प्रेरणा के लिए समर्पित होना चाहिए?
Verse 17.
उसका 17 पद.
That the man of God may be adequate, thoroughly equipped and furnished for every good work.
ताकि परमेश्वर का जन परमेश्वर का भक्त भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए, प्रत्येक भले कार्य के लिए, सब कार्य के लिए.
God, that's the preacher, he must have a firm conviction and the divine inspiration of the word of God.
तो कौन है ये परमेश्वर का जन? ये वो प्रचारक है जिसके पास परमेश्वर के वचन की प्रेरणा को लेकर के सही उत्तम भावना होनी चाहिए मन में.
This book is not according to the wisdom of the world.
ये जो पुस्तक है संसार के बुद्धि के अनुसार नहीं है ये वचन.
This book is not like the Muslim Quran.
जो वचन है ये मुसलमानों के कुरान की जैसे नहीं है.
This book is not like the Hindu holy book.
और ये हिंदुओं के पवित्र पुस्तकों के समान नहीं है.
This book is not like the Buddhist writing.
और ये जो बुद्धा जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके पुस्तकों के समान नहीं है.
This book is inspired by God.
लेकिन ये पुस्तक परमेश्वर के द्वारा प्रेरित की गई.
He believes in the sole authority of the word of God.
और जो एक सच्चा प्रचारक है वो परमेश्वर के वचन के संपूर्ण अधिकार पे संपूर्णता से विश्वास करता है, मानता है उसको.
That the word of God is complete and finished.
वो ये मानता है कि परमेश्वर का वचन पूरा हो गया, परिपूर्ण है और अब खत्म हो गया है, मतलब जितना है उतना हमारे लिए काफी है.
That nothing to be added to it, nothing to be taken from it.
आप परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है और परमेश्वर के वचन से कुछ निकाला नहीं जा सकता है.
It's not the word of God plus the the tradition of the church.
और ये परमेश्वर का वचन और उसके साथ साथ हमारे कलीसिया के रीति रिवाज और परंपरा नहीं है.
It's not the word of God plus the authority of the Roman Catholic Pope.
और परमेश्वर के वचन के साथ साथ हम रोमन कैथोलिक कलीसिया के जो पोप हैं उस पे हम नहीं मानते हैं.
It's not the word of God plus something from the Quran.
और हम ऐसा नहीं मानते कि परमेश्वर के वचन के साथ साथ और साथ में हम कुरान पे भी कुछ मानते हैं.
Do we need to use the Quran to preach the gospel or to witness to the Muslim?
क्या हमको कुरान की जरूरत है मुसलमानों को सुसमाचार बताने की?
The word of God is alive and powerful and sharper than any two-edged sword.
परमेश्वर का वचन जीवित है और किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा धारदार है.
Faith comes by hearing, hearing by the word of Christ.
विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है.
Men are born again not by perishable seed but by the imperishable word of God.
लोग नाश होने वाले बीज से जन्म नहीं उत्पन्न होते हैं लेते हैं लेकिन ना नाश होने वाले परमेश्वर के वचन से लोग जन्म लेते हैं.
Jesus said the flesh profits nothing.
और यीशु मसीह ने कहा है कि शरीर को तो कोई भी लाभ नहीं होता है.
I have spoken to you, they are spirit and they are life.
और जो वचन मैंने तुमसे बोला है वो उसकी आत्मा है और उसके वचन है उसी में जीवन पाया जाता है.
यरमिया
उसका 23वां अध्याय.
Look at Jeremiah 23.
मैं साथ यरमिया उसका 23वां अध्याय निकाल लिए.
Talking about the sole authority of the word of God.
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के एकमात्र अधिकार की बात कर रहे हैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं.
There's nothing additional that there's nothing else to be added to it.
और यहाँ पे कुछ और जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है.
Chapter 23.
23 अध्याय यरमिया 23 अध्याय. और उसका 25वां पद.
What the prophets say who prophesy falsely say, I had a dream, I had a dream.
और यहाँ पे 23वां अध्याय उसके 25वें पद में यहाँ पे लिखा है झूठे भविष्यवक्ता लोग मेरे नाम से झूठ मूठ में नबूवत करते हुए कहते हैं मैंने स्वप्न देखा है स्वप्न देखा है.
Verse 28.
और 28वां पद.
The prophet who has a dream may relate his dream, but let him who has my word speak my word in truth.
और जो नबी स्वप्न देखता है वो स्वप्न बताए परंतु जिसके पास मेरा वचन है वो मेरे वचन को सच्चाई से सुनाए.
What does the straw have in common with the grain?
और भूसे को गेहूं से क्या लेना देना है?
Listen carefully.
आप ध्यान सुनिए इस बात को.
Sole authority of the word of God.
और परमेश्वर के वचन का संपूर्ण अधिकार है पूरा अधिकार है.
No additional revelation to be added to the word of God.
और परमेश्वर के वचन के अतिरिक्त किसी और प्रकाशन को जोड़ने की जरूरत नहीं है.
Now God can give more understanding and insight and illumination into the word of God.
परमेश्वर का आत्मा और भी अधिक अपने वचन के प्रति समझ और प्रकाशन को हमारे पास दे सकता है.
Does not add any new revelation to the word of God.
और लेकिन वो परमेश्वर के वचन में और अधिक कोई नया प्रकाशन नहीं जोड़ता है.
So we pay no attention to the words and traditions of man.
तो हम लोगों के शब्दों और लोगों के परंपराओं पर ध्यान नहीं देंगे.
We do not listen to the false prophecies of false teachers.
और हम झूठे भविष्यवक्ताओं के झूठी भविष्यवाणियों को नहीं सुनेंगे.
We do not listen to the men on TV that said God spoke to me and gave me a new word.
और टीवी में जो प्रचारक लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और मुझको नया वचन दिया हम उनकी बातों को नहीं सुनेंगे.
God speaks to us by the Spirit through the word of God.
परमेश्वर का वचन हमसे बात कर परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है लेकिन अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है.
You don't need to add to it, you don't need to take away from it.
आपको परमेश्वर के वचन में कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ निकालने की आवश्यकता
है. Believe in the power of the word of God.
आपको परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य पे विश्वास करना है.
Do you believe in the authority of the word of God?
क्या आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य और परमेश्वर के वचन के अधिकार विश्वास करते हैं?
इंस्पिरेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड.
क्या आप परमेश्वर के वचन की प्रेरणा पे विश्वास करते हैं?
Gospel is the power of God for salvation to everyone who believes.
वो सब लोग जो लोग विश्वास करते हैं उनके निमित्त सुसमाचार बचाए जाने की सामर्थ्य है.
Whoever calls on the name of the Lord will be saved.
जो कोई भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा.
How will they call upon him who may have not believed?
और वो कैसे उसको पुकारेंगे जिसपे उन्होंने विश्वास ही नहीं किया है और वो लोग उस पर कैसे विश्वास करेंगे अगर उसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं है और कैसे वो लोग सुनेंगे बिना किसी प्रचारक के और लेकिन वो लोग प्रचार कैसे करेंगे जब तक उनको भेजा नहीं जाएगा क्या कोई व्यक्ति एक सामान्य प्रकाशन के द्वारा बचाया जा सकता है
What is general revelation?
सामान्य प्रकाशन का मतलब क्या हो गया?
God reveals something about His nature and His attributes through what He has made.
परमेश्वर अपने चरित्र के बारे में और अपने बारे में हम पे प्रकट करता है जो कुछ भी उसने सृष्टि किया है उसके द्वारा.
Psalm 19 verses 1 to 7.
भजन 19 एक से लेकर के 11 पद तक.
The heavens declare the glory of God.
ये जो स्वर्ग है ये जो आकाश है वो आपके परमेश्वर की महिमा को हम पे प्रकट करते हैं.
Romans chapter 1.
रोमियों का पहला अध्याय.
At the beginning of time, his divine nature and invisible attributes have been clearly seen through that which he has made.
और अब समय के आरंभ से वो सब कुछ जो उसने बनाया है उसके द्वारा परमेश्वर के अदृश्य गुण और उसके चरित्र हम पे प्रकट किए गए हैं.
So that men are without excuse.
ताकि लोगों के पास कोई भी बहाना ना रहे.
Men are going to be saved.
अगर लोगों को बचाया जाना उनका उद्धार होना है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही होगा तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही होगा और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होगा आपके खुद के विचारों के द्वारा नहीं आपकी गवाही के द्वारा नहीं आपके इतिहास के द्वारा नहीं और सांसारिक विचारधाराओं के द्वारा नहीं और जो कुरिन्थियों के चर्च हैं उनके साथ समस्या क्या थी
They were impressed by worldly wisdom and excellent speakers.
और वो लोग जो संसार की जो बुद्धि थी और जो बढ़िया बोलने वाले लोग थे वाक्पटुता में जो तेज थे उनसे वो लोग बड़े प्रभावित हुए थे और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में यीशु मसीह जो कि क्रूसित है उसको छोड़ के उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं बात करूंगा
authority and inspiration of the word of God.
आपको परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य पर और परमेश्वर के वचन के प्रेरणा के ऊपर आपको विश्वास करना मानना ही मानना है कि उसका वचन सामर्थ्य है और प्रेरित किया गया उसके द्वारा.
Because it calls us to be born again.
क्योंकि उसके वचन के द्वारा ही हम लोग को नया जन्म मिलता है.
It has given us new life.
क्योंकि उसका वचन ही हमको नया जीवन देता है.
Our own soul.
क्योंकि उसका वचन ही हमारे प्राणों को भोजन प्रदान करता है.
Gives us direction for our life.
और उसका वचन ही है जो हमको हमारे जीवन में दिशा प्रदान करता है.
So he must be truly born again.
तो इसलिए एक प्रचारक को सर्वप्रथम वास्तव में उसका नया जन्म होना आवश्यक है और साथ ही साथ उसके जीवन उसके अंदर कायलता होनी चाहिए विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अधिकार को लेकर के और परमेश्वर के वचन के प्रेरणा को लेकर के और तीसरी बात यह है जिसको हम पहले बता चुके हैं आपको और साथ ही साथ ना सिर्फ वो परमेश्वर के वचन की प्रेरणा और अधिकार पर विश्वास करता है लेकिन परमेश्वर के वचन से प्रेम भी करता है.
There are many books in the world.
उसको परमेश्वर के वचन से प्रेम करना देखिए संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं
called you to preach.
लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको प्रचार करने के लिए बुलाया है
One book,
तो केवल एक ही पुस्तक है
One life,
एक ही जीवन है
One calling,
एक ही बुलाहट है
One ministry.
एक ही सेवकाई है
And he loves this book.
और वो इस पुस्तक से प्रेम करता है
he lives in this book.
और वो इस पुस्तक में जीवन व्यतीत करता है
He reads it for his own spiritual growth.
और वो इस पुस्तक को अपने स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए बार बार पढ़ता रहता है
He hides the word of God in his own heart.
वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छिपा के रखता है
He memorizes and meditates upon it every day.
और वो परमेश्वर के वचन पे को याद करता है और उस पर मनन करता है प्रतिदिन
And he grows in his understanding of the truth of the word of God.
और वो परमेश्वर के वचन के सत्य के ज्ञान में बढ़ता चला जाता है
So here is the question.
तो मेरा प्रश्न ये है
Are you born again?
क्या आपका नया जन्म हुआ है?
Do you believe the Bible is truly the word of God?
क्या आप ये विश्वास करते हैं कि वचन सच में परमेश्वर का वचन है बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है?
The word of God more than your necessary food.
क्या आप परमेश्वर के वचन से अपने रोजमर्रा के भोजन से अधिक प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं?
Those are the characteristics characteristics of a true Bible interpreter.
और एक सच्चे परमेश्वर के वचन के व्याख्या करने वाले के ये सही गुण हैं, पहचान है.
Number four.
चौथी बात.
He has a humble dependency upon the Holy Spirit.
उसके वो जो है पवित्र आत्मा के ऊपर नम्रता से निर्भर रहता है. नम्रता से पवित्र आत्मा पे निर्भर रहता है.
He studies and he works hard.
नम्रता से वो पवित्र आत्मा पे निर्भर रहता है. वो अध्ययन करता है, मेहनत करता है और अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करता है. लेकिन वो सिर्फ अपनी ही समझ पे भरोसा नहीं करता. यद्यपि वो मेहनत भी करता है और अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग भी करता है, लेकिन सिर्फ केवल अपनी ही योग्यताओं पे निर्भर नहीं करता, अपनी समझ पे नहीं निर्भर करता है. लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा करता है, निर्भर रहता है. इसलिए जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और अध्ययन करने जाता है,
Open my eyes that I may understand wonderful things from your law.
और तो फिर वो परमेश्वर कहता है, प्रभु जी मेरे मस्तिष्क को खोलिए ताकि मैं आपके वचन में से अद्भुत बातों को सीख सकूं.
He prays what Paul prays in Ephesians 1 and Ephesians 3.
और फिर वो इफिसियों पहले और इफिसियों दूसरे अध्याय में जो प्रार्थना पौलुस ने की थी, वही प्रार्थना वो भी करता है, वो प्रचारक भी करता है.
That the Spirit may, that God may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of understanding and the knowledge of Him.
कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपने पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे.
What is the peculiar ministry of the Spirit of God?
परमेश्वर के आत्मा की एक विशेष सेवा क्या है?
John chapter 13.
यूहन्ना का 13 अध्याय.
14.
यूहन्ना का 14 अध्याय.
15.
यूहन्ना का 15 अध्याय.
16.
और यूहन्ना का 16 अध्याय.
The upper room discourse.
और जो ऊपरी कक्ष का जो वार्तालाप है.
Jesus said, "I am going away."
और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ.
But I have not left you as orphans.
लेकिन मैंने तुमको अनाथ के रूप में नहीं छोड़ा है.
I will send a helper who will come and he will be with you forever.
और मैं तुमको एक सहायक दे के जाऊंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा तक रहेगा.
He will be with you.
वो तुम्हारे साथ रहेगा.
He will be in you.
और वो तुम्हारे भीतर रहेगा.
And what is his ministry?
और उसकी सेवकाई क्या होगी?
He will lead you into all truth.
वो तुमको प्रत्येक सत्य में लेकर के जाएगा, पूरे सत्य में प्रकाश अगुवाई करेगा.
He will not speak of himself.
वो अपने बारे में बातचीत नहीं करेगा.
He will take the things of mine and reveal it to you.
वो हम अपनी मेरी बात को लेकर के तुम पे प्रकट करेगा.
And he will make known to you things to come.
और वो तुम पे आने वाली बातों को प्रकट करेगा.
And if a man is dependent upon the Holy Spirit,
और अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर है,
he knows he has need for God's grace and illumination,
और उसको अगर मालूम है कि उसे परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के प्रकाशन पे भरोसा करना है,
what will be his physical posture?
तो फिर उसका जो शारीरिक हाव भाव होगा, मुद्रा होगी, वो कैसे होगी?
He'll live on his knees.
तो जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर करता है, उसकी शारीरिक मुद्रा ऐसी होगी कि वो अपने घुटनों पे जिएगा.
He will live on his knees.
वो अपने घुटनों पे जीवन व्यतीत करेगा.
He is humble.
वो नम्र होगा.
He is broken.
वो टूटा हुआ होगा.
He is dependent.
वो निर्भर होगा.
He knows he needs the power of the Spirit of God.
और वो ये बात को जानेगा कि उसे परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है.
Paul said in 1 Corinthians 2,
पौलुस ने पहले कुरिन्थियों दूसरे अध्याय में कहा,
I did not come with superiority of speech or of wisdom, making known to you the testimony of God.
और उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास अपनी बुद्धि और वचन के बड़े शब्दों से लेकर के नहीं आया परमेश्वर ज्ञान को तुम पे प्रकट करने के लिए.
Weakness and in fear and in trembling.
लेकिन उसके विपरीत मैं तुम्हारे पास कमजोरी में और कांपते हुए और डरते हुए आया.
And my preaching and teaching was not according to persuasive words of wisdom.
और मेरा जो सिखाना था, जो शिक्षा देना था, वो बहुत बड़े प्रभावशाली शब्दों में नहीं था.
According to the demonstration of spirit and of power.
लेकिन परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ और उसके प्रभाव में, उसके प्रकटीकरण में हुआ था.
Faith would not rest on the wisdom of men, but upon the power of God.
ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों की बुद्धि पे ना भरोसा करे, निर्भर हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पे निर्भर हो.
Every time you open this book,
और जितनी बार आप इस पुस्तक को खोलेंगे
for yourself,
और जब आप इसको अपने लिए पढ़ेंगे,
to your children,
जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे
to prepare messages,
और जब आप प्रचार को संदेशों को तैयार करेंगे और जब आप दूसरों को सिखाने के लिए तैयार करेंगे अगर आप इसको सही तरीके से व्याख्या करना चाहते हैं तो आपको नम्रता के साथ पवित्र आत्मा पे निर्भर होना पड़ेगा. आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं आपसे.
नंबर सिक्स,
छठी बात,
he must have the gift to teach.
और उसके पास शिक्षा देने का वरदान होना चाहिए.
We already mentioned that this morning.
हमने इस बात को पहले ही सिखा दिया, बता दिया.
And finally,
और अंत में,
he must be diligent and disciplined and willing to work hard.
उसको मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए और ठीक तरीके से प्रयत्न करने के लिए तैयार होना चाहिए.
Paul says, take pains with these things.
और पौलुस कहता है इन सब चीजों को करने के लिए प्रयत्न करो, मेहनत करो.
Be diligent to present yourself a workman approved to God.
और बड़े ही सावधानी से अच्छी तरह से मेहनत करो और अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग कार्यकर्ता करके प्रकट करो. तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपके भीतर इस तरह के गुण पाए जाते हैं? क्या वास्तव में आपका नया जन्म हुआ है? क्या आप उस जीवित परमेश्वर के साथ नजदीकी में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे
हैं?
अगर मेरे अंदर छिपा हुआ पाप है, अगर मेरे अंदर आप पश्चाताप किया हुआ पाप है, अगर हमारे संबंध है जो एक दूसरे से ठीक नहीं है, तो वो हमारे संबंधों को परमेश्वर से रुकावट डालता है और पवित्र आत्मा की सेवकाई जो हमारे भीतर है उसमें रुकावट आती है उससे. और फिर आप मेरे साथ एक पद को देख सकते हैं, हो सकता है और हो सकता है कि आप स्थल को देखें बार बार और जब आप देखते हैं तो कोई प्रकाशन नहीं होता है, कोई समझ नहीं आएगी. और उस वचन खंड के भीतर जो ज्ञान की बात है वो आपको नहीं दिखाई देगी. समस्या क्या हो रही है यहाँ पे? क्योंकि हमारे भीतर छिपा हुआ ना पश्च माना हुआ पाप छिपा हुआ है.
In his home,
उनके घर में,
in his heart,
उनके हृदय में,
in his eyes,
उनके आंखों में,
in his mind,
उनके मन में,
with his tongue,
उसके जवान में.
Listen carefully,
ध्यान से सुनिए इस बात को.
If you want to properly interpret the word of God,
अगर आप ध्यान से सही तरीके से परमेश्वर के वचन का अनुवाद करना चाहते हैं तो आपके पास परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य का होना आवश्यक है. और आपके भीतर एक शुद्ध जीवन होना चाहिए, भीतर और बाहर दोनों शुद्ध जीवन होना चाहिए.
These are the characteristics of a good Bible interpreter.
और ये एक अच्छे वचन के व्याख्या करने वाले के गुण हैं.
Any question?
कोई प्रश्न है अब आपके पास?
We didn't say anything about a diploma from Bible college.
हमने बाइबल स्कूल से किसी स्नातक डिग्री या डिप्लोमा की बात नहीं की है.
Now, if you have an opportunity and you're called, that may be a blessing.
अगर आपके पास अवसर है और आप बुलाए गए हैं तो हो सकता है ये बढ़िया, बहुत बढ़िया आशीष है आपके लिए.
Don't want an ignorant, uneducated ministry.
हम अशिक्षित, अज्ञान से भरी हुई सेवकाई नहीं चाहते हैं.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान सुनिए इस बात को.
Remember what Luke said in Acts chapter 4.
याद है आपको लूका ने प्रेरितों काम उसके चौथे अध्याय में क्या कहा था?
Look at Acts 4.
मेरे साथ देखिए प्रेरितों काम उसका चौथा अध्याय.
Peter and John have been called before the council.
पत्रस और यहुन्ना को वहां पे काउंसिल के सम्मुख बुलाया गया, सभा के सामने बुलाया गया.
Verse 7.
तो वहां पे उन लोगों को बीच में खड़ा कर लोग पूछने लगे, तुम लोगों ने ये काम किस सामर्थ्य से अथवा किस नाम से किया?
And Peter said, well, I learned this at Bible college.
और फिर उसके उत्तर में पत्रस ने कहा, मैंने ये बातें तो बाइबल स्कूल में सीखी हैं.
That what he said?
क्या यही कहा पत्रस ने यहाँ पे?
What does it say?
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? पत्रस क्या कहता है? चौथा अध्याय पे तो काम.
Verse 8.
आठवां पद.
Then Peter filled with the Holy Spirit.
और तब पत्रस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के.
He had the help and the power of the Holy Spirit.
उसके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की सहायता थी.
And this is the fulfillment of Jesus' words before time.
और ये यीशु मसीह के शब्दों का पूरा होना है जो पहले उन्होंने कहा था. और जब तुमको अधिकारियों के सामने बुलाया जाएगा तो तुम चिंता मत करना कि तुम क्या कहोगे. यीशु मसीह ने बात कही थी कि नहीं कही थी? और यीशु मसीह ने कहा था अपने शिष्यों से कि पवित्र आत्मा उस समय उस क्षण तुम्हें सहायता करेगा, बताएगा तुम्हें क्या बोलना है. अब ध्यान सुनिए इस बात को. और कुछ प्रचारक लोग जो बात यीशु मसीह ने कही है उस पद को सही तरीके से उसका अनुवाद नहीं करते हैं. और उसको उस पद को उसके संदर्भ से बाहर निकाल देते हैं. और फिर वो लोग क्या कहते हैं उस पद को? वो लोग ये कहते हैं हमको तो अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो संदेश तैयार करने की जरूरत नहीं है, मैं तो रविवार की सुबह खड़ा होऊंगा और फिर मैं प्रार्थना करूंगा. और प्रभु आपने कहा था कि मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा उस क्षण अगर तुम मुझसे प्रार्थना करके मांगोगे. ओ प्रभु मुझसे बात करिए.
That is a misinterpretation of the verse.
और जो पद यीशु मसीह ने वहां पे बोला था उस पद का इस तरह से अगर हम करेंगे व्याख्यान तो वो गलत अनुवाद होगा, गलत व्याख्या होगी.
It is a violation of a basic principle of Bible interpretation.
और वचन के व्याख्यान का जो आधारभूत सिद्धांत है उसको हम खराब करेंगे, गलत करेंगे वहां पे.
And what is that principle?
और वो सिद्धांत क्या है? हाँ जी, context.
Every verse must be interpreted in light of its context.
और एक बहुत ही आधारभूत व्याख्यान का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक पदों को उसके संदर्भ में के प्रकाशन में हमको अनुवाद करना चाहिए.
That is one of the most important principles of Bible interpretation.
वचन के व्याख्यान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमको वचन के संदर्भ में पदों का व्याख्यान करना चाहिए.
Constantly proof texting, pulling verses here, here, and here.
और चक्कर क्या है? समस्या ये है कि पुरुष लोग जो है, मनुष्य लोग अक्सर वचन को बिना संदर्भ के बार बार कभी इधर से उखाड़ लेते, कभी इधर से उखाड़ लेते हैं, अलग अलग संदर्भ से बाहर निकाल के उनको समझने की कोशिश करते हैं.
But if you ignore the context, you will misinterpret the word of God.
और अगर आप कभी भी संदर्भ को अनदेखा करेंगे तो आप परमेश्वर के वचन का गलत अनुवाद निकालेंगे.
But in Acts chapter 4,
लेकिन प्रेरित काम उसके चौथे अध्याय में वो पवित्र आत्मा से भर गया और फिर उसने बड़े ही सामर्थ्य से वचन का प्रचार किया. और फिर 11 पद में देखिए और उसने पुराने नियम का उद्धरण किया पत्रस ने. और ये पत्रस ने कहा कि यीशु मसीह इस पुराने नियम का जो वचन है उसका परिपूर्णता है, उसको पूरा कर रहा है यीशु मसीह. और यहाँ पे जब वो उद्धरण कर रहा है पुराने नियम का तो हमें एक और सिद्धांत को देते हैं वचन के व्याख्यान के बारे में. और वो सिद्धांत क्या है व्याख्यान के बारे में? और कभी भी आप किसी भी पद का जब व्याख्यान करते हैं तो आप संपूर्ण बाइबल के इतिहास के प्रवाह के संदर्भ में होकर के उसका व्याख्यान करते हैं.
And the Bible is Christ-centered.
और जो वचन है परमेश्वर का वचन है तो ना सिर्फ हम छुटकारे के इतिहास के संदर्भ में और उसके प्रवाह में होकर के हम व्याख्यान करते हैं, लेकिन हमको एक बात को ध्यान रखना है कि संपूर्ण बाइबल जो है यीशु मसीह में केंद्रित है.
So if I ask you this question,
तो अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं,
what is the main message of the Bible?
अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि संपूर्ण बाइबल का मुख्य संदेश क्या है?
Preaches a message, he must pay attention to several things.
और जब एक व्यक्ति प्रचार करता है उसको कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए.
What is the subject of my sermon?
उसको एक बात कहना है कि जो संदेश मैं प्रचार कर रहा हूँ उस संदेश का विषय वस्तु क्या है, किस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ?
Is the purpose of my sermon?
ना सिर्फ मेरा विषय क्या है संदेश का, लेकिन मुझे ये भी ध्यान देना है कि मेरे संदेश का उद्देश्य क्या है.
That is the subject and the purpose are related, but they're not the same.
तो हमारे संदेश का विषय और हमारे संदेश का उद्देश्य, उन दोनों में संबंध जरूर है, लेकिन वे दोनों एक ही चीज नहीं है.
The subject is what you are talking about.
लेकिन विषय वो है किस विषय, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो विषय हो गया. जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो तो विषय हो गया.
And the purpose is what you want to accomplish, the goal you're trying to reach.
लेकिन उद्देश्य ये है कि हमारे प्रचार का मकसद क्या है, हम किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो हमारे संदेश का उद्देश्य हो गया.
And the Bible is like a message from God.
और जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर की ओर से एक संदेश के स्वरूप में है.
It has one main subject.
और उस संदेश में एक मुख्य विषय है.
And you can trace that subject as it unfolds through the scripture.
और आप उस विषय को उसको देख सकते हैं जब आप संपूर्ण वचन को खोलने लगते हैं.
And all verses ought to be interpreted in light of that larger subject.
और संपूर्ण वचन को उस विषय के प्रकाशन में, हम प्रकाश में हमको उसका अनुवाद करना चाहिए.
And God has a purpose in giving us the Bible.
और परमेश्वर ने जो हमको वचन दिया है उसके पीछे भी उसका एक उद्देश्य है.
So if I ask you to give me the subject of the Bible in one sentence, what would you say?
अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक वाक्य में परमेश्वर के वचन क्या के का विषय हमको बताएं, तो फिर आप क्या बताएंगे? परमेश्वर के वचन बाइबल का क्या विषय है? क्या आप हमको एक वाक्य में ये बात बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं?
In fact, let me give you one minute.
और बल्कि हम एक काम करते हैं, हम आपको एक मिनट देते हैं और आप एक कागज के ऊपर लिखिए परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसका जो मुख्य विषय वस्तु वो आखिर है क्या, क्या मुख्य किस चीज के बारे में बात कर रहा है
बाइबल.
आप अलग अलग तरीके से उसको कह सकते हैं,
but it will contain several basic truths.
लेकिन उसमें कई आधारभूत सत्य पाए जाएंगे.
We'll write it down in one sentence.
लिखिए एक वाक्य में लिखिए, एक वाक्य में लिखिए आप क्या सोचते हैं बाइबल का विषय क्या है. हाँ जी, do you want them to write it and give the paper to you?
Right, I'm not going to give it to you.
नहीं नहीं, आप लिखिए, अपने 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 देना नहीं आपको. अब इसका मतलब लिखिए, अब ये मत कहिए अच्छा अब लिखने की जरूरत नहीं है. लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए. एक वाक्य में
बताना नहीं,
हो सकता है हम लोग पूछ भी लेंगे सरप्राइज बाद में.
छाछठ
पुस्तकें,
how many authors? 39? 40?
Yes, 40 authors.
40 authors.
40 लेखक.
Over several thousand years.
कई सालों के ऊपर.
God inspired it.
परमेश्वर ने उसको प्रेरित किया.
And from the book of Genesis to the book of Revelation, it slowly develops one main subject.
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर सिर्फ एक मुख्य विषय के बारे में बात कर रहा है. बताइए अभी पूछते हैं.
A sentence.
एक वाक्य में, एक शब्द में नहीं, एक वाक्य बताइए, एक शब्द में नहीं, एक वाक्य में संपूर्ण बाइबल की का मुख्य विषय क्या है एक वाक्य में.
जस्ट डोंट से
अभी ये मत बोलिएगा कि मुख्य विषय संपूर्ण बाइबल का यीशु मसीह. एक शब्द मत बोलिएगा. दे वांट टू आंसर.
यस,
परमेश्वर का पुत्र यीशु अनंत जीवन देता है.
द सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट गिव्स अस इटर्नल लाइफ. हाँ जी, जीसस इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द होल बाइबल एंड थ्रू दैट गॉड इज ग्लोरिफाइड. हाँ जी,
यीशु का जीवन मृत्यु के अनुसार,
जीसस लाइफ डेथ एंड रेजरेक्शन. हाँ जी,
ये तो मैं नहीं हूँ.
हाँ जी, उसको बाद में समझाइएगा चाय के टाइम. सही और गलत का अंतर बताते हैं. ओके और कोई?
लव
है. जीसस लव्ड अस. रिडेम्पशन फॉर मैनकाइंड. रिडेम्पशन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. छुटकारा मानव जाति का इतिहास. कोई और?
यीशु के द्वारा परमेश्वर पापों की क्षमा देता है.
गॉड फॉरगिव्स अस सिन थ्रू जीसस क्राइस्ट. कोई और? हाँ जी. जजमेंट थ्रू जीसस क्राइस्ट. यस. God is great and is worthy to be praised. God's manifestation of love for people. हाँ जी, हाँ जी. सोच लीजिए फिर. कोई और? हाँ जी. बारी 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 बारी. Yes. हर एक मानव जाति के लिए उद्धार का संदेश. हाँ जी. हाँ जी. बाइबल इज गॉड्स वर्ड. बहुत सही बात. कोई और? इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट. कोई और? एंटायर मैनकाइंड शुड वर्शिप गॉड. God saves people through His Son for His glory. Only one mediator, that is Jesus Christ, to reach God. The message of the Bible is God's judgment. Jesus shows His love and holiness. And his character attributes. Yes. कोई और? हाँ जी. चुरा लिया, कट कॉपी पेस्ट कर लिया. प्रॉमिस मेड एंड प्रॉमिस कैप्ट. ही स्टोल फ्रॉम मार्क डेवर्स. पता भी चल गया.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए सर.
All of those are good answers.
ये सारे जो आपने उत्तर दिए, not all, but most of them.
Most of them are good answers.
अधिकांश जो उत्तर आपने दिए वो अच्छे उत्तर हैं. अधिकांश उत्तर.
But about 80% of your answers focused upon the benefit that man received.
लेकिन जो आपने हमको उत्तर दिए थे उनमें से 80% उत्तर मनुष्यों ने जो फायदा पाया है उस पे ध्यान उनका केंद्रित है.
And that is important. That is important.
और वो महत्वपूर्ण है. भैया ट्रेन छूट गई, टाइम चला गया, बाद में.
You can say it many different ways.
आप इसको कई तरीके से बोल सकते हैं.
The coming of Christ to establish God's kingdom through the gospel.
मसीह का आना उसके सुसमाचार के द्वारा.
The message of the Bible is that a redeemer is a king is coming.
और एक
a Messiah is coming.
मसीहा आने वाला है.
Who will establish God's kingdom.
जो परमेश्वर के राज को स्थापित करेगा.
How will he do it?
कैसे करेगा वो?
Through the gospel.
सुसमाचार के द्वारा.
So you can say it many different ways.
तो आप अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि बात को.
But it's important that you get a grasp and an understanding of the scripture.
लेकिन ये आप अलग अलग तरीके से इस बाइबल के मुख्य विषय को बता सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप इसको समझ जाएं अच्छी तरह से. एक और प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे.
What is God's ultimate purpose?
परमेश्वर का अंतिम मुख्य अंततः आखिरी उद्देश्य क्या है?
In Ephesians chapter 3,
इफिसियों के तीसरे अध्याय में,
it says this is according to God's eternal purpose.
ये परमेश्वर के अनंत उद्देश्य के अनुरूप हुआ है.
What is God's eternal purpose?
और परमेश्वर का वो अनंत अभिप्राय आखिर है क्या?
Where is God going?
आखिरकार परमेश्वर किस दिशा में जा रहा है?
God's goal.
परमेश्वर का उद्देश्य लक्ष्य क्या है?
You need to be able to answer that question as well.
इस प्रश्न का उत्तर देना आपको आना चाहिए.
And we've talked about this before.
और इसके बारे में हम लोग पहले बातचीत कर चुके हैं.
You can say it many different ways.
इसको आप कई तरीके से बोल सकते हैं, अलग-अलग तरीके से.
What is God's eternal purpose?
परमेश्वर का अनंत काल का उद्देश्य क्या है?
It is to manifest His own glory.
ये उसको स्वयं की महिमा का प्रकटीकरण है.
By the establishment of His kingdom.
अपने राज्य के स्थापना के द्वारा.
Through the exaltation of His Son.
उसके पुत्र के महिमा ऊंचे पर उठाए जाने के द्वारा.
Through the gospel.
सुसमाचार के माध्यम से.
God's glory,
परमेश्वर की महिमा,
God's kingdom,
परमेश्वर का राज्य,
God's son,
परमेश्वर का पुत्र,
God's gospel,
परमेश्वर का सुसमाचार.
God is seeking to manifest His own glory.
परमेश्वर हर एक बात में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है.
How will He do that?
कैसे करेगा वो?
By establishing His kingdom.
वो अपने राज्य को स्थापित करने के द्वारा.
How will He do that?
वो अपने राज्य को कैसे स्थापित करेगा?
Exalting His son.
अपने पुत्र को ऊंचे पे उठाने के द्वारा.
How does He exalt His son?
अपने पुत्र को ऊंचे पे कैसे उठाता है वो?
Through the gospel.
सुसमाचार के माध्यम से.
God highly exalted him.
परमेश्वर ने अपने पुत्र को बड़े ऊंचों पे उठाया.
Gave him a name that is above every name.
उसने उसको एक ऐसा नाम दिया जो कि प्रत्येक नाम के ऊपर है.
That at the name of Jesus every knee should bow and every tongue should confess that Jesus is Lord.
ताकि उसके नाम में हर एक घुटना झुके, हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है.
Is that where the verse ends?
क्या यहीं पे पद खत्म हो जाता है ला?
What's the last phrase?
और फिर उसके बाद आखिरी वाक्यांश क्या है?
So that every knee shall
bow. Oh, we've already quoted that. God highly exalted him and gave him a name above every name, that every knee should bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Did it say that? To the glory of God the Father.
अच्छा, आप लोग सब लोग बोल रहे हैं कि हर एक घुटन झुके, हर एक जीवन कार करे, यीशु मसीह प्रभु है, ठीक है. लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद भी कुछ और है. उसके बाद में जो उसके बाद जो आगे का वाक्यांश वो ये है, ताकि पिता की महिमा हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
Back to Acts chapter 4.
पेटर काम उसके चौथे अध्याय में.
Peter understood this.
पत्रस इस बात को समझ गया.
He understood that the coming of Christ was according to God's eternal purpose.
वो समझ गया कि यीशु मसीह का आना परमेश्वर के अनंत अभिप्राय के अनुसार है.
That the coming of Christ was prophesied and predicted in the Old Testament.
और यीशु मसीह का आना पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी और उसके बारे में कहा गया था.
And it is fulfilled in the New Testament.
और ये नए नियम में आकर इसको परिपूर्णता हुई है.
When John had been put into prison, Jesus came and began to preach.
और जब यूहन्ना जो यूहन्ना वो है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जब वो कटघरे में है, जब वो जेल में है, तो यीशु मसीह प्रचार करते हुए आए.
What was his message?
तो उस समय उसका संदेश क्या था? क्या संदेश, क्या प्रचार कर रहा था वो?
God loves you and wants you to be saved.
और वो यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि तुम बच जाओ.
God loves you and wants to bless your life.
और परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारे जीवन को आशीष देना चाहता है.
Is that the first thing Jesus preached?
क्या यही चीज यीशु मसीह ने प्रचार किया था जब वो प्रचार करने आए?
What did he say?
यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया?
The kingdom of God is at hand.
परमेश्वर का राज निकट है, नजदीक है.
King has arrived.
जो राजा है वो आ गया है.
And what should men do?
और इसलिए अब लोगों को क्या करना चाहिए?
Repent.
पश्चाताप करिए.
And believe the gospel.
और सुसमाचार पे विश्वास करिए.
Jesus came to announce and to establish the kingdom of God.
यीशु मसीह परमेश्वर के राज की घोषणा करने आए थे और परमेश्वर के राज की स्थापना करने आए थे.
And when he taught us to pray.
और जब उसने सिखाया हमें प्रार्थना करने
के लिए.
लूका उसका 11 अध्याय.
Pray this way.
इस तरह से आप प्रार्थना करिए.
Father who art in heaven, hallowed be your name.
हमारे पिता जो तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए.
Bless my life in every way.
हमारे नाम को bless my life in every way. Okay, yeah. I see what you're doing. I'm like, what happened?
That's the new
हमारे पिता तेरे नाम पवित्र माना जाए और हमारे जीवन को हर एक तरह से आप आशीषित करिए. यही प्रार्थना की थी ना यीशु मसीह ने.
Thy kingdom come.
नहीं, आपका राज्य आवे.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
You're going to properly interpret the word of God.
अगर आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से अनुवाद करेंगे.
You must have an understanding of the unfolding of the purposes of Christ.
तो फिर आपको यीशु मसीह परमेश्वर के जो उद्देश्य हैं वो कैसे प्रकट किए जा रहे हैं, खुल रहे हैं, हमारे सामने रखे जा रहे हैं, उनका प्रकटीकरण कैसे हो रहा है, उसको सही तरीके से समझना पड़ेगा हमको और आपको. यीशु मसीह ने फरीसियों से क्या कहा? यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा कि तुम वचन को ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र में तुमको जीवन मिलेगा.
But they speak of me.
लेकिन जो पवित्र शास्त्र है वो मेरे बारे में बात करते
हैं. When he was raised from the dead,
और जब यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठा दिया गया और जब वो अमाउस के रास्ते में जा रहे थे, दो आदमी लोग जा रहे थे और यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए, तो यीशु मसीह ने उन आदमियों से क्या कहा?
Slow of heart not to understand all the things spoken of by the prophets.
और तुम जो निर्बुद्ध हो और कम समझ रखने वाले हो, क्या तुम नहीं जानते उन सारी बातों को जो भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में कही थी?
That the Christ must suffer and rise again.
और उन्होंने वचन में पवित्र शास्त्र में कहा था कि मसीह को दुख उठाना होगा, मारा जाएगा, फिर वो जी उठेगा.
And beginning with Moses.
और फिर मूसा से आरंभ करके
from the law and the psalms and the prophets all things concerning himself.
और उसने उनको भजन से आरंभ मूसा से व्यवस्था से शुरू किया, भजन बताया और भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया, वे सारी बातें जो यीशु मसीह के खुद के स्वयं के बारे में पवित्र शास्त्र में पाई जाती थी.
This is a hermeneutical principle.
और ये एक सिद्धांत है व्याख्या शास्त्र का.
And we'll look at it in a moment.
और उसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे.
Can't lift verses out of their context.
आप परमेश्वर के वचन में पदों को बिना संदर्भ के उन पदों को मत उखाड़िए, मत निकालिए.
You cannot separate it from the unfolding of the purposes of God.
ना सिर्फ आप उनको संदर्भ से मत निकालिए, ना ही आप जो परमेश्वर का उद्देश्य है जो पूरे वचन के प्रवाह में पूरा हो रहा है, जो हमारे सामने प्रकट होता है, उससे भी अलग मत करिए उसको.
The main message of the word of God is the coming of Christ to establish a kingdom through the gospel.
और परमेश्वर के वचन का जो मुख्य विषय है वो ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह के आने के द्वारा अपने राज की स्थापना कर रहा है.
Some preachers say this.
कुछ लोग ये कहते हैं,
I can preach Christ from every verse in the Bible.
हम परमेश्वर के वचन के हर एक पदों से यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं.
Is that possible?
क्या ये संभव है?
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को.
We can preach Christ as he is progressively revealed in every part of the Bible.
हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर सकते हैं जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, हर एक खंड को जो प्रगतिशील तरीके से उसका प्रगटीकरण किया जा रहा है हमारे सामने.
But Christ is not specifically individually mentioned in every verse of the Bible.
लेकिन यीशु मसीह को सफाई से, खास तौर से, विशेष तौर से, सीधे तौर पे हर एक पदों में नहीं वर्णन किया गया उसका.
But every verse of the Bible is part of a section of the Bible that contains more revelation of Christ.
लेकिन हर एक पद उस खंड का हिस्सा है जो कि वचन का हिस्सा है जो यीशु मसीह के बारे में और प्रगतिशील तरीके से, प्रगतिमान तरीके से और भी बढ़ते तौर पे हमको यीशु मसीह के बारे में प्रकटीकरण करता है, बताता है क्या है यीशु मसीह, कौन है.
So in Acts chapter 4,
इसलिए पहले तो काम उसके चौथे अध्याय में
Peter had the help of the Holy Spirit,
पवित्र आत्मा ने पत्रस की सहायता की
and he knew and understood the purposes of God.
और वो समझ गया और जान गया परमेश्वर के उद्देश्यों को, अभिप्रायों को.
Now these are the characteristics of a good Bible interpreter.
और ये है एक अच्छे वचन के व्याख्या करने वालों के गुण.
Born again.
नया जन्म पाया हुआ.
He believes the Bible is the word of God.
वो ये विश्वास करता है कि वचन बाइबल परमेश्वर का वचन है.
He loves the scripture.
वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है.
He is willing to work hard and pay a price.
वो मेहनत करने के लिए तैयार है और कीमत चुकाने के लिए तैयार है.
He has an amazing gift to teach the word of God.
उसके पास वचन सिखाने का एक आधारभूत वरदान है.
And he has a humble dependency on the spirit of God.
और उसके पास परमेश्वर के पे भरोसा करने का नम्रता है.
Any question?
कोई प्रश्न है आपके पास?
Do you have these characteristics?
क्या आप में ये गुण पाए जाते हैं?
I know this is very simple.
मुझे मालूम है कि बड़ी सरल बातें कर रहा हूं मैं.
But the problem in many Indian churches.
लेकिन अधिकांश मसीह कलीसियाओं में समस्या ये है.
Failure to be this kind of man.
कि इस तरह के पुरुष और लोग नहीं पाए जाते हैं.
And a failure to apply proper biblical principles of interpretation.
और परमेश्वर के वचन के सही सिद्धांत सही तरीके से लागू नहीं किए जाते हैं.
So let's take a break.
तो आइए अब हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे.
And when we return, we'll survey quickly some basic principles, then we'll apply them to these questions.
और हम वापस आएंगे और फिर हम जल्दी से कुछ और सिद्धांतों को देखेंगे और फिर इन प्रश्नों पे लागू करते चलेंगे.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
You have a stewardship.
आपको एक भंडारीपन मिला है.
God has entrusted to you the mysteries of the kingdom of God.
परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के राज के रहस्यों को आपको दिया है, प्रदान किया है.
We have this treasure in earthen vessels.
और हमारे पास ये एक खजाना है जो कि मिट्टी के बर्तनों में है.
And you are to accurately handle the word of God.
और आपको परमेश्वर के वचन को सही तरीके से ठीक ठाक तरीके से उसको आपको व्याख्या करनी है.
One day you will give an account for your ministry.
और एक दिन आप अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर के सामने हिसाब देंगे.
I'm 67 years old.
मैं 67 साल का हो गया हूँ.
And I'm soon to be gone.
और मैं जल्दी चला जाऊंगा.
And one day.
एक दिन.
Very soon.
बहुत जल्दी.
I'll stand before Christ.
प्रभु के सामने खड़ा होऊंगा मैं.
And I'll give an account for this day.
और प्रभु के सामने मैं इस दिन के लिए भी हिसाब दूंगा उसे.
What I said.
मैंने क्या कहा.
And what I taught.
और मैंने क्या सिखाया.
And you will give an account.
और आप हिसाब देंगे.
For what you heard.
जो आपने सुना.
And what you learned.
जो आपने सीखा.
And what you applied.
और जो आपने लागू किया अपने जीवन में.
Let's pray.
आइए हम प्रार्थना करें.